समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार करिश्मा, नमस्कार, हेलो, गुड डे एवरीबॉडी, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स। वेल, यू आर ट्यून टू परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम विद मी शगुन चोपड़ा एंड यस विद मी टुडे इज माय को होस्ट करिश्मा राय। सो लिसनर्स, फॉर यू first we'll give you the headlines and today's discussion segment Dateline India, well, it is dedicated to the spotted sprinter. So we'll find out who that spotted sprinter is. Also we'll talk about India-Russia ties, India-Russia friendship. So we have two topics that we will be discussing about. Also we have so many capsules and tributes which will be there at the ending section. The ending segment is there and all of this over the next 30 minutes. So stay tuned with us, listeners. We are beginning first with the headlines.
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे।
डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड हिज रशियन काउंटरपार्ट टू को चेयर इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन इन न्यू दिल्ली दिस इवनिंग।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वन्य जीवों की रक्षा और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना भारत के सभ्यतागत लोकाचार का अभिन्न अंग। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर प्रोजेक्ट चीता की सफलता को याद किया।
यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा देवी लॉन्चेस 100-day इंटेंसिव अवेयरनेस कैंपेन फॉर अ चाइल्ड मैरिज फ्री भारत।
वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान बढ़ाकर 7.4% किया। उपभोक्ता खर्च में बढ़ोतरी और हाल के कर सुधारों से बेहतर आर्थिक माहौल इसका प्रमुख कारण।
सो दिस इज नाउ आवर सेगमेंट डेटलाइन इंडिया। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट इंडिया रशिया फ्रेंडशिप, रादर एक्सप्लोर this relationship, this friendship.
राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। अगले 2 दिनों में वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों से लेकर व्यापार, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया तक हर विषय पर चर्चा करेंगे। साथ ही कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके सम्मान में एक भव्य भोज का भी आयोजन कर रही हैं। अब जरा सोचिए कि भारत रूस के स्वादिष्ट व्यंजनों का क्या ही जायजा होगा।
वेल यस, एंड द टेस्ट द डिशेस दे विल बी एक्सप्लोरिंग इट एंड वी विल फाइंड द फोटोग्राफ्स देयर इन द न्यूज़पेपर्स एज वेल, आई थिंक सो। बट करिश्मा, इंडिया एंड रशियाज़ फ्रेंडशिप इज़न्ट जस्ट अबाउट पॉलिटिक्स, इट गोज वे बैक विद फुल ऑफ विच इज फुल ऑफ फन स्टोरीज ऑफ देयर दोस्ती, अ दोस्ती दैट सर्वाइव्ड टाइम। India and Russia often call each other trusted and time-tested friends. So generations have grown up hearing this line and it still feels true because both countries have stood by each other through thick and thin. So take space, for example, Russia helped India launch its first satellite Aryabhatta in the year 1975 and India's first astronaut Rakesh Sharma flew ऑन अ रशियन सोयुज मिशन इन 1984.
वाओ, बिल्कुल. और सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि जब उनसे पूछा गया कि अंतरिक्ष में भारत कैसे दिखता है, तो उन्होंने मशहूर गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाया था. तो इस पल ने दोनों देशों के बीच भावनात्मक संबंधों को और ज्यादा मजबूत किया. और फिर बॉलीवुड में भी 1950 के दशक से ही भारतीय फिल्में रूस में हिट रही हैं. राज कपूर अभिनीत 1955 की क्लासिकल फिल्म आवारा इतनी लोकप्रिय हुई थी कि उन्हें सोवियत संघ में भारत का चार्ली चैपलिन उपनाम भी दिया गया था.
ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको?
जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहाज से अच्छा.
और इस पल ने दोनों देशों के बीच भावनात्मक संबंधों को और मजबूत किया. और फिर बॉलीवुड में भी देखा जाए तो 1950 के दशक से ही भारतीय फिल्म रूस में हिट रही है. राज कपूर की अभिनीत फिल्म भी काफी चर्चित रही. और देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो फिल्मों का सिलसिला है वो इस दोस्ती को भी गहरा करता हुआ दिखाई दिया.
वेल यस करिश्मा, एंड वी कैन इमेजिन पीपल इन द सोवियत यूनियन विल वॉचिंग द फिल्म अगेन एंड अगेन, ऑल्सो सिंगिंग एंड डांसिंग टू द ट्यून्स एंड चेयरिंग इन देयर लिविंग रूम्स. एंड वेल हिज आइकॉनिक सॉन्ग मेरा जूता है जापानी, दिस स्ट्रक अ कॉर्ड विद रशियन ऑडियंसेस. मेरा जूता है जापानी. And this embraced its upbeat melody and message of pride and identity.
बिल्कुल. और जब राज कपूर रूस गए तो सड़कें सजी हुई थी और उनका स्वागत किसी सुपरस्टार के जैसे किया गया था. यह दोनों देशों को जोड़ने वाले सिनेमा का असली जादू कहा जा रहा था.
Well, exactly. And speaking of magic, Karishma, if you ever go to Moscow, which I would want you to go, check out the Moscow India Friendship Park. Moscow India Friendship Park. It's a little slice of India in Russia with gardens, sculptures, and there is a temple there. And every year, Russians celebrate Diwali and Holi there. And Karishma, they throw colors just like we do at each other.
बिल्कुल. वाह. और यह दोस्ती एक तरफा नहीं है क्योंकि रूसियों को भारतीय साहित्य पसंद है और भारतीयों को रूसी क्लासिकल्स. भारत भर के स्कूलों और कॉलेजों में आपको छात्र टॉल्स्टॉय, दोस्तोवस्की और चेखव पढ़ते हुए मिल जाएंगे.
एंड ऑन द फ्लिप साइड करिश्मा, मेनी रशियंस डिस्कवर्ड इंडिया थ्रू द वर्क्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर. सो वेदर इट्स सिनेमा, फेस्टिवल्स और बुक्स, लिटरेचर, द बॉन्ड फ्लोज बोथ वेज. एंड इन पार्ट्स ऑफ रशिया स्पेशली वेयर योगा इज पॉपुलर, पीपल हैप्पीली ग्रीट ईच अदर विद नमस्ते, मेकिंग इंडो रशियन कल्चरल एक्सचेंजेस फील नेचुरल एंड वार्म.
Bilateral trade between India and Russia has grown rapidly and reached a record $68.7 billion in the financial year 2024-25, with Indian exports at $4.9 billion. Both countries are working towards ambitious targets with $100 billion in annual bilateral trade by 2030. In science and technology, both the countries work together on basic sciences, material science, mathematics, and cutting-edge areas like Gaganyaan. India established its only nuclear power plant with another country at Kodankulam in Tamil Nadu in collaboration with Russia. Both countries enjoy deep-rooted and centuries-old cultural relations that predate India's independence, tracing back to the 15th century. Generations of Russians have grown up watching iconic Indian films, and since the 1980s, yoga has gained immense popularity, especially in major cities. In defense, both countries follow a special 10-year agreement that guides all their military and defense technology cooperation. Russia is also an important source for the supply of defense equipment, engines, spare parts, and components. Several defense platforms are also assembled and produced in India, such as T-90 tanks and Su-30 MKI aircraft. In education, about 20,000 Indian students study in Russian institutes, while Indology is taught in several Russian universities apart from Indian languages such as Hindi, Sanskrit, and Pali. India and Russia also cooperate closely at several multilateral platforms such as the United Nations, G20, BRICS, and Shanghai Cooperation Organization. Russian President Vladimir Putin's two-day strategic visit to India for the 23rd India-Russia Annual Summit will further strengthen this already deepened relationship across multiple dimensions. For Parikrama, with Adarsh Kumar, Bhanu Pratap Singh, Akashvani News, Delhi.
तो चाहे विज्ञान हो, संस्कृति हो या लोगों के बीच आपसी संबंध हो, भारत और रूस दशकों से एक साथ चलते रहे हैं और अब इस शिखर सम्मेलन के साथ एक नया अध्याय शुरू हो रहा है.
वेल यस, राइटली सेड करिश्मा. And now we will move on. And remember, listeners, I told you in the beginning that we will be telling you about and talking about and discussing about the spotted sprinter. So that spotted sprinter is cheetah. And today is International Cheetah Day, a day which is dedicated to celebrating the world's fastest land animal. And when I say fastest, how fast can you imagine it, Karishma?
Bilkul,
Should I tell you?
Bilkul.
So let me tell you, they are capable of reaching speeds greater than 70 miles per hour in just over 3 seconds.
Wow.
Just over. So yes, the cheetah is literally the Formula One racer of the wild.
और सबसे अच्छी बात यह भी है कि क्या चीतों की बात अगर जब की जाती है तो क्या आप जानते हैं कि भारत ने 70 साल बाद उनका स्वागत एक बार फिर से किया है. 2022 में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान पहुंचे, जो दुनिया की पहली अंतर महाद्वीपीय चीतों के स्थानांतरण परियोजना का प्रतीक था. कूनो अचानक से वन्य जीवों की वापसी की सबसे बड़ी कहानियों में से एक का मंच बन गया.
Yes, Karishma. Prime Minister Narendra Modi has wished all wildlife lovers and conservationists dedicated to protecting cheetah on International Cheetah Day today. In a social media post, the Prime Minister called the cheetah one of the planet's most remarkable creatures and recalled the success of Project Cheetah, which was launched 3 years ago.
बिल्कुल. और इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि इस परियोजना का उद्देश्य इस शानदार जीव की सुरक्षा और उस पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्स्थापित करना है जिसमें यह वास्तव में फल फूल सके. श्री मोदी ने कहा कि यह लुप्त हो रही प्रजाति को पुनर्जीवित करने और हमारी जैव विविधता को मजबूत करने का एक प्रयास भी है. प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि चीता पर्यटन की बढ़ती लोकप्रियता देखकर काफी खुशी हो रही है.
The birth of 5 cubs by a female cheetah born in India, it is strong proof that cheetahs have fully adapted to the Indian environment. He added that India is proud to be home to several cheetahs and a significant number of them are born on Indian soil.
दशकों पहले जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है. भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है.
So what makes cheetahs so special, Karishma? They don't roar, they don't even chirp and meow, that meow, like house, big house cats. So what do they do exactly? They do this. How great is that? And they have tear marks, black lines running from eyes to mouth that work like natural sunglasses. And they are the oldest big cat species dating back more than 5 million years.
बिल्कुल. और ये यहीं पे नहीं रुकता, यहाँ एक और मोड़ है. पृथ्वी पर सभी चीते आनुवांशिक रूप से बहुत समान हैं, लगभग एक जैसे जुड़वा बच्चों की तरह. भारत में कूनो के चीते सिर्फ जानवर ही नहीं हैं, वे संरक्षण नवाचार के प्रतीक भी हैं. हर नया जन्म, हर सफल शिकार, हर अनुकूल एक छोटी सी जीत है और हर असफलता हमें प्रकृति के साथ सह अस्तित्व के बारे में कुछ न कुछ जरूर सिखाती है.
सो यस, टुडे ऑन इंटरनेशनल चीता डे, लिसनर्स टेक अ मोमेंट टू सेलिब्रेट दिस स्पॉटेड स्प्रिंटर, फॉर्मूला वन रेसर ऑफ द वाइल्ड. इट्स इनक्रेडिबल कम बैक टू इंडिया एंड द पीपल वर्किंग टायरलेसली टू सिक्योर इट्स फ्यूचर.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है. काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने वाले काशी तमिल संगम के चतुर्थ संस्करण की कल वाराणसी में शुरुआत हो चुकी है और इस दौरान विविध सांस्कृतिक और शैक्षणिक सत्रों का आयोजन किया जा रहा है.
काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण की थीम चलो तमिल सीखें, तमिल करकलाम को लेकर नमो घाट पर छात्रों के लिए विशेष एकेडमिक सत्र का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य बच्चों को तमिल भाषा, लोक कथाओं और दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक वैभव से परिचित कराना था। कार्यक्रम में सबसे पहले बच्चों को तमिल लोक कथा सुनाई गई, जिसमें तमिल संस्कृति की गहराई और नैतिक संदेशों का रोचक वर्णन था। इसके बाद नैतिक सोच विकसित करें गतिविधि के माध्यम से छात्रों में नैतिक चिंतन, मूल्यों की समझ और निर्णय क्षमता को बढ़ाने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रहा जादुई पात्र, जिसे मुग्धा शाह ने अत्यंत मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुति ने बच्चों को कहानी और जादुई तत्वों के माध्यम से सीख देने का अनोखा माध्यम प्रदान किया। इसके बाद कार्यक्रम का दूसरा सत्र शुरू हुआ, जिसके तहत एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसका विषय था वाराणसी के मनोरम घाट। बच्चों ने अपने चित्रों में काशी के प्राचीन घाटों, गंगा की धारा, आध्यात्मिक माहौल और सांस्कृतिक सौंदर्य को रंगों के माध्यम से जीवंत किया। परिक्रमा के लिए राघवेंद्र त्रिपाठी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
So, listeners, seaweed cultivation is emerging as one of India's most promising blue economy opportunities, offering immense potential for improving the livelihoods of coastal communities. So, with its long coastline and favorable tropical waters, India is well positioned to become a major hub for sustainable seaweed farming. Strengthening the country's prospects in this direction, Puducherry has recently taken a significant step forward with a successful maiden harvest of its seaweed cultivation project. Let's find out more from our correspondent.
Following the footsteps of Karaikal, Puducherry district has also ventured into the arena of seaweed cultivation last September. Six fishermen from the Pannithittu Fishermen Cooperative Society, supported by the village panchayat, undertook the farming operations. They had received hands-on training in cage fish culture and seaweed farming at the Mandapam Regional Centre of ICAR-CMFRI. The initiative is part of a one-year project. As part of the project, 16 high-density polyethylene seaweed rafts integrated with a 6-meter sea cage were deployed at coastal locations in Pannithittu, Karukalacheri and Pattinacheri. The HDPE-based tube net system was designed to withstand rougher sea conditions. The pilot project, which began last April, will continue till April 2026. Talking to Akashwani, Deputy Director of Fisheries and Fishermen Welfare Department, Rajendran said that CMFRI has identified 23 potential seaweed farming sites in the region, indicating strong prospects for expansion. The seaweed cultivation marks a promising shift towards sustainable and women-inclusive marine-based income generation. With scientific support, government backing, and active participation of fisherwomen, Puducherry's maiden seaweed harvest marks a transformative move towards a resilient and inclusive blue economy. For Parikrama, this is Bibinasnath, Akashwani News, Puducherry.
गुजरात के सीमावर्ती जिले कच्छ के रण में 4 महीने तक चलने वाले रणोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और आज की पूर्णिमा की रात सफेद रण की खूबसूरती में 4 चांद लगेगी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी आज धोर्डो पहुंचकर इस अनोखे उत्सव में शामिल होंगे। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता अशरफ नथवाड़ी के पास, जो रण की चांदनी कच्छ के सांस्कृतिक वैभव और रणोत्सव के आकर्षणों से रूबरू करवा रहे हैं।
गुजरात के टूरिज्म हब माने जाने वाले कच्छ के सफेद रण में विश्व प्रसिद्ध रणोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज पूर्णिमा की अनोखी चांदनी में दुनिया भर में मशहूर सफेद रण का नजारा देखने धोर्डो पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री शाम को आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। चूंकि आज मौजूदा सीजन की पहली पूर्णिमा है, इसलिए बड़ी संख्या में सैलानी भी चांदनी से नहाए रण की खूबसूरती देखने धोर्डो पहुंच रहे हैं। सीमावर्ती कच्छ जिला अब टूरिज्म की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुका है। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की सूची में शामिल धोर्डो के सफेद रण में हर साल 4 महीने तक चलने वाले रणोत्सव की वजह से देश विदेश के सैलानियों के बीच बेहद लोकप्रिय बन गया है। रणोत्सव कच्छ की कला, संस्कृति, परंपरा और मेहमान नवाजी का अनोखा संगम है। धोर्डो गांव के सरपंच मियां हुसैन बताते हैं कि ग्राम्य पर्यटन विकसित होने से जिले में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हुए हैं।
ये रणोत्सव 2005-06 से यहां पे चालू हुआ है, हर साल में उसमें बढ़ोतरी होती रहती है और पूरा वर्ल्ड लेवल के लोग भी आते हैं, हमारे देश के भी आते हैं, इंटरनेशनल नेशनल G20 जैसी समिटें भी यहाँ हो चुकी है। इसके लिए धोरडो का आज बहुत बड़ा एक टूरिज्म का इवेंट बन चुका है, जिसके लिए हमारे पूरे कच्छ को भी सैलानी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उसकी वजह से रोजगार भी मिलता है और दिन ब दिन धोरडो में नई नई एक्टिविटी बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से हमारे पूरे कच्छ का विकास भी हुआ है, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना है। धोरडो पहले 100% सोलार भी बन चुका है। जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, उनका ऐसा विजन था कि बॉर्डर का विलेज है वो इसी तरह डेवलपमेंट हो और यहाँ पे ये रण है, देख के लोग बाहर से भी आए और पूरे हमारे कच्छ को उसको बेनिफिट मिले, इसलिए हमारे गौरव की बात।
कच्छ की पारंपरिक पहचान बुंगा से बनी विशाल टेंट सिटी, सफेद रेगिस्तान में ऊंट सफारी, स्थानीय हैंडीक्राफ्ट एवं लोक नृत्य, यह सब इसके मुख्य आकर्षण है। पर्यटकों की सुविधा के लिए गुजरात पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन और गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम की ओर से विशेष व्यवस्थाएं भी की गई है। कुल मिलाकर रणोत्सव न केवल कच्छ के सांस्कृतिक वैभव को दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है, बल्कि स्थानीय ग्रामीण जीवन की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। परिक्रमा के लिए भूज से अशरफ नथवाणी।
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल।
So the top Indian shooters are geared up for the International Shooting Sport Federation or ISSF World Cup final set to take place from today in Doha, Qatar. India will field a 15-member team led by world champion Samrat Rana alongside top shooters like Suruchi Singh and Manu Bhakar. The World Cup final hosts the best shooters of the year in each of 12 individual Olympic categories who will fight it out for the Best Shooter of the Year award. Now in some business news, benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty, ended in positive territory today, snapping a four-day losing streak. The Sensex gained 159 points to close at 85,265, while the Nifty added 48 points to settle at 26,033.
और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
आज की इस कड़ी में हम याद कर रहे हैं महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत के रॉबिनहुड कहे जाने वाले टंट्या भील को। ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करते हुए वे 4 दिसंबर 1889 को शहीद हो गए थे। टंट्या भील ने 12 साल तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया। अदम्य साहसी टंट्या भील में विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का जुनून था।
टंट्या भील का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के बडाडा गांव में हुआ था। वे अंग्रेजों को सबक सिखाना चाहते थे और समतावादी समाज का सपना साकार करना चाहते थे। भारत को अंग्रेजों की अधीनता से मुक्त कराने के जोश और जुनून भरे अपने कारनामों के कारण वे बार बार पकड़े गए और कई बार जेल तोड़कर भाग भी निकले।
वे एक कुशल निशानेबाज और गुरिल्ला योद्धा थे। दावा या फलिया उनका मुख्य हथियार था और बाद में उन्होंने बंदूक चलाना भी सीख लिया था।
अपनी युवावस्था से जीवन भर घने जंगलों, घाटियों और पहाड़ों में रहने वाले टंट्या ने शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य की पुलिस और होलकर राज्य की सेनाओं से लोहा लिया। टंट्या ने कई बार पुलिस को चकमा दिया।
टंट्या ब्रिटिश सरकार के खजाने और उनके समर्थकों की संपत्ति को लूटकर गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देते थे। वे लोगों में मामा के नाम से लोकप्रिय थे।
इंदौर की सेना के एक अधिकारी ने टंट्या को क्षमा का वादा किया, लेकिन धोखे से उन्हें जबलपुर ले जाया गया। वहाँ उन पर मुकदमा चलाया गया और 4 दिसंबर 1889 को फांसी दे दी गई। हम इस देशभक्त को नमन करते हैं।
आज ही जन्म हुआ था स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय गणराज्य के 8वें राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरामन का। वे एक सच्चे राष्ट्रवादी थे। धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और अहिंसा के गांधीवादी सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले वेंकटरामन मूल रूप से मानवतावादी थे।
वेंकटरामन का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी में तंजौर जिले के पास पट्टुकोट्टई के राजा मदम गांव में हुआ था। उन्होंने लॉ कॉलेज मद्रास से कानून में योग्यता प्राप्त की।
वेंकट रामन को 1935 में मद्रास उच्च न्यायालय में नामांकित किया गया था। कानून की प्रैक्टिस करते हुए वेंकट रामन ब्रिटेन की औपनिवेशिक अधीनता से भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए।
1946 में जब ब्रिटिश शासन से भारतीय हाथों में सत्ता का हस्तांतरण नजदीक था, भारत सरकार ने वेंकट रामन को जापान के सहयोग के अपराध में भारतीय सैनिकों की पैरवी के लिए मलाया और सिंगापुर भेजे जाने वाले वकीलों के पैनल में शामिल किया। बाद में वे संविधान सभा के लिए भी चुने गए।
वेंकट रामन 4 बार लोकसभा के लिए चुने गए और उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री के रूप में काम किया। 1984 में वे भारत के 7वें उपराष्ट्रपति बने। 1987 में वे भारत के 8वें राष्ट्रपति बने और 1992 तक इस पद पर रहे। 27 जनवरी 2009 को उनका निधन हो गया। रामास्वामी वेंकट रामन आजीवन लोक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रहे। महान राष्ट्रवादी रामास्वामी वेंकट रामन को हमारा नमन।
आज हम शहीद फिरंगोजी शिंदे को भी याद कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 4 दिसंबर 1857 को हुई थी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के गिरगांव में बाजी शिंदे के यहाँ जन्मे फिरंगोजी एक किसान थे। उन्होंने दिसंबर 1857 में कोल्हापुर के महाराजा चीमा साहेब की गिरफ्तारी के बाद कोल्हापुर महल में ब्रिटिश सेना के शिविर पर हमले में भाग लिया था। वे 4 दिसंबर 1857 को लड़ाई में शहीद हो गए। आकाशवाणी इस शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करता है।
और इसके साथ ही आज हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के बेहद लोकप्रिय अभिनेता शशि कपूर को, जो फिल्मी दुनिया में बतौर बाल कलाकार आए थे लेकिन भारतीय सिनेमा में एक रोमांटिक हीरो के रूप में स्थापित हो गए। दीवार, कभी कभी, सत्य प्रेम, नमक हलाल, शर्मीली जैसे अनेक फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया और फिल्म दीवार का जो मशहूर डायलॉग था, मेरे पास माँ है, आज भी लोगों को याद है। तो आइए सुनते हैं संवाद।
जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ उसका अंजाम शायद बुरा भी हो सकता है, लेकिन जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसका अंजाम सिर्फ बुरा ही होता है भाई। मेरे असूल, मेरे आदर्श मुझे इसकी इजाजत नहीं देते हैं।
उफ, तुम्हारे असूल, तुम्हारे आदर्श, किस काम के हैं तुम्हारे असूल? क्या दिया उन आदर्शों ने? ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो। हम दोनों एक साथ इस फुटपाथ से उठे थे, लेकिन आज तुम कहाँ रह गए और मैं कहाँ गया? आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास?
मेरे पास माँ है।
Well, yes, this dialogue and Amitabh Bachchan also there with him. And we know him for his versatile acting prowess and charming screen presence. So I would like to mention here that a memorable example of his performance is from Raja in Jab Jab Phool Khile. This was a role that solidified his stardom and he also earned praise for his performances in theatre and international cinema as well. In the 1960s and 70s, he popularized, the gentle, elegant romantic leads in commercial Hindi language movies as opposed to the masculine heroes of the time.
Ek din jana pardesiyon se na akhiyan milana pardesi khilte hain gul yahan khil ke bikharne ko।
तो शशि कपूर को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए कई अवार्ड मिले, जिसमें पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी सम्मानित उन्हें किया गया था।
मिलके बिछड़ने को लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए सवेरा जब हुआ।
और इसके साथ ही आज हम याद कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के बेहतरीन और स्वाभाविक अभिनय के लिए मशहूर कलाकार मोतीलाल को, जिनका आज जन्मदिवस है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और उनका अभिनय काफी नेचुरल एक्टिंग दिखाई देती थी और उन्होंने देवदास, परिणीता, झूला, पैसा ही पैसा जैसी कई यादगार फिल्मों में काम किया। आइए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म से ये संवाद।
कलकत्ता हमें राज नहीं आया, दिल्ली में एक नौकरी कर रखी है, उस सिलसिले में दौरे पर जा रहे हैं। आज यहाँ कल वहाँ, तुम कहाँ जा रहे हो?
ये भी कुछ तय नहीं किया।
मकसद?
जिंदगी में अब कोई मकसद ही नहीं रहा चुनी बाबू।
तुम रहे वही देवदास। अच्छा ठहरो, इतने दिनों के बाद मिले हैं, मुलाकात को रंगीन किया जाए।
Today we are also remembering renowned Punjabi dramatist and short story writer Balwant Gargi. Well, it's his birth anniversary today and he stands tallest among contemporary Punjabi artists on the strengths of research books. He was awarded Sahitya Academy Award and in 1962 for his book Rang Manch. This was followed by Padma Shri and Sangeet Natak Academy Award in Punjabi play writing as well. And now, listeners, I think we have to end the program, but you keep listening to Akashvani. And thank you so much, listeners, for tuning in.
Namaskar.